تفسیر سورت نبا مکی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات کی تعداد 174 ہے، حروف 801 ہیں۔ سورت نبا دوسری آیت کے جو فقرہ ہے اس سے اس کا نام لیا گیا، عن النبا العظیم، اور یہ اس کا نام ہی نہیں بلکہ اس سورت کے مضامین کا عنوان بھی ہے۔ اور نبا سے مراد ہے بڑی خبر، اہم خبر، قیامت اور آخرت کی خبر۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے اما، اور یہیں سے 30ویں پارے کا اور آخری پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک دن تھا جب الف لام میم شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ ہم آخری پارے پہ پہنچے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یتیو من یشاء، ہے نا؟ اور سورۃ یونس میں کیا کہا، فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اما یتساءلون، اس سے سورۃ نبا کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ نبا کا مضمون بھی سورۃ مرسلات والا ہے۔ یہ سورۃ مرسلات کا جوڑا ہے، دونوں کے مرکزی مضمون میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، آفاق، تاریخ اور انفس اس کے دلائل ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد امتحان ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو پھر وہ دن ہوگا فیصلے کا، اور وہ دن ہوگا حساب اور کتاب کا۔ لب و لہجہ دونوں صورتوں کا ملتا جلتا ہے، اور آغاز میں ہی جو ہے وہ سوالیہ انداز اختیار کیا گیا، عما یتساءلون۔ عین میم میم آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ان اور ما تھے، دو تھے، ان ما۔ ان جو ہے یہ جیسے بارے میں متعلق اباؤٹ کے لیے آتا ہے، اور جو میم کے ساتھ الف ہے، الف اس کا جو ہے وہ گر چکا ہے، یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، تو ان دونوں کو جب ملا دیا گیا تو نون جو ہے وہ میم کے اندر مدغم ہو گیا، اما۔ تو کس چیز کے بارے میں یتساءلون، یتساءلون جو ہے یہ اس کے معنی ہے کہ آپس میں سوال کرنا، آپس میں پوچھ گچھ کرنا۔ اور تساءلون مصدر ہے، اس سے ہے یتساءلون، اور یتساءلون جو ہے یہ مضارعے کا صیغہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سورت کے آغاز میں ہی استفہام کا انداز اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اور مکی جو لوگ تھے، مکہ کے رہنے والے، ان کی محفلوں میں کسی چیز پر چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، بڑی آپس میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ سوال جواب ہو رہے ہیں۔ تو مکہ والے مشرکین اور کفار ایک دوسرے سے کیا پوچھتے تھے؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ جس قیامت کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، کیا واقعی یہ آئے گی؟ یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ مر جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے، اور یہ والی بات کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو کیا واقعی یہ جو ہے یہ ہو کر رہے گا؟ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس چیز کی نسبت یہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبا العظیم، عن متعلق، نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں، اہم خبر کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ نبا سے پہلے بھی الف لام میم ہے، اور عظیم سے پہلے بھی الف لام میم ہے، تو نکرہ نہیں، معرفہ، خاص خبر ہے۔ اور پھر نبا ہی کافی تھا، عظیم کیوں آ گیا؟ اس کی جو ہے وہ اہمیت کو بتانے کے لیے۔ عظیم ہڈی کو کہتے ہیں نا ویسے، عین زوئے میم، تو हड्डी जो है जैसे उनके जानवर बड़े और बड़ी बड़ी हड्डियां, तो खबर भी बड़ी है, अजीम है। क्या उस बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, वो उसके बारे में मुख्तलिफून इख्तलाफ करते हैं। मुख्तलिफ वाहिद है और मुख्तलिफून इसका जो है वो जमा है। तो एक मानी तो ये है कि कयामत की खबर के बारे में ये मुख्तलिफ चे में गोइयां करते हैं। दूसरे इसके मानी ये हैं हम फी मुख्तलिफून के, कि दुनिया के अंजाम के बारे में ये कोई मुत्तफिक अलह अकीदा नहीं रखते। बाद ये समझते थे कि जब मर जाएंगे तो मरने के बाद दूसरी जिंदगी जिस्मानी नहीं होगी, रूहानी होगी, जैसे कि ईसाइयों का भी अकीदा है। और फिर एक इनकी राय ये थी कि कतई तौर पर आखिरत के मुनकिर नहीं थे, बल्कि इन्हें शक था, हो भी सकता है या फिर ना भी हो। सूरत जासिया आयत 32, इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नु वमा नहनु बिमुस्तैकिनीन। तो यकीन नहीं, शक था, सूरत जासिया 32। अच्छा, एक फिर उनका ये भी इन लोगों का अंदाज था, कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, बस दुनिया की जिंदगी है सब कुछ, और मरने के बाद हम हरगिज उठाए नहीं जाएंगे। और फिर आप देखिए कि फिर इनमें से कोई ये भी कहता था, मैं युहयिल इज़ामा वहिया रमीम, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब ये बोसीदा हो चुकी होंगी। सूरत यासीन आय 78। तो इनके मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ अकवाल, कोई सबूत नहीं, कोई इल्म नहीं, बल्कि कयास और गुमान के ये तीर तुक्के जो थे वो चलाते थे। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, आज भी जो है वो दुनिया के बारे में, दुनिया की जिंदगी के बारे में लोगों के तीन अकीदे पाए जाते हैं। एक ये कहते हैं जो मेटीरियलिस्ट हैं कि बस ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई, यही है दुनिया की जिंदगी, बस यही के मजे हैं और कुछ भी नहीं। दूसरा ग्रोह ये कहता है अवागोन का नजरिया, जैसे हिंदुओं के यहां भी, कि दुनिया में इंसान जैसा अमल करता है, फिर उसके अमल करता है, मर जाता है, तो उसके अमल के मुताबिक फिर उसकी दूसरी जिंदगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर अच्छा था तो फिर जो है वो किसी अच्छी रूह में आ जाता है, और अगर वो बुरा होता है तो कुत्ते बिल्ली या किसी जानवर की शक्ल में आता है। और तीसरा नजरिया जो कि अंबिया ने दिया और कुरान ने पेश किया, और वो ये कि दुनिया की जिंदगी जो है ये आरजी है, और इंसान मर जाएंगे और फिर दोबारा जो है वो अल्लाह के हुजूर जो है वो जिंदा होंगे। अब एक बात याद रखें कि मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज किया तो आपकी दावत की बुनियाद तीन चीजें थी। नंबर एक, अल्लाह के साथ किसी को खुदाई में शरीक न किया जाए। नंबर दो, कि आपको अल्लाह ने अपना रसूल मुकर्रर किया है। और नंबर तीन, कि इस दुनिया का एक रोज खात्मा हो जाएगा, फिर एक दूसरी दुनिया आएगी, एक दूसरी दुनिया होगी जिसमें अव्वलीन आखिरीन सबको जमा करके फिर उनका हिसाब किताब लिया जाएगा, और हिसाब किताब होगा अकायद के मुताबिक और अमाल के मुताबिक। तो उसमें जो मोमिन और सवाले होंगे वो हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे होंगे वो हमेशा के लिए दोजख में जाएंगे। अच्छा, इन तीनों बातों में से जो अकीदा तौहीद था, अहले मक्का को वो सख्त नागवार था, लेकिन ये नहीं कि वो अल्लाह की हस्ती के ही मुनकिर हों। वो अल्लाह को मानते तो थे, जैसे रब्बे आला, खालिक, रज़ाक वगैरह, लेकिन वो एक नहीं मानते थे। अल्लाह की जात, सिफात, उलूहियत में जो थे वो शिर्क करते थे। अच्छा, दूसरी बात जिसको मक्का वाले मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और वो क्या थी, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो रसूल होने का दावा करना। वो ये नहीं कहते थे कि आप झूठे हैं, एक तरफ आपको अमीन और सादिक भी कहते और फिर दूसरी तरफ जो है आपके दावा रिसालत का जो थे इनकार करते, और उसके लिए उन्होंने फिर बड़े बहाने तराशे। तो पहली दो बातें जो थी इसका भी वो इनकार करते थे, तौहीद और रिसालत का, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छा इंसान, अमीन, सादिक और बहुत ही रास्तबाज मानते थे। हैरानी और ताज्जुब की बात यह थी कि हम ही जैसा एक इंसान रसूल बनाकर कैसे भेज दिया गया। लेकिन जो तीसरी बात जिसका उन्होंने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया, सबसे ज्यादा हैरानी और ताज्जुब का इजहार किया, जिसको वो बईद अकल समझते थे, मानते ही नहीं थे कि ये हो सकता है, जिसको उन्होंने नकाबले तसव्वुर और नकाबले यकीन जो है वो समझा और इसका फिर उन्होंने चर्चा भी किया, ये क्या था? अकीदा आखिरत। और आप देख लीजिए कि जितना ज्यादा उसका उन्होंने अकीदा आखिरत का इनकार किया, तो मक्का मौजमा के इब्तदाई दौर की सूरतों में ज्यादातर जोर जो है वो आखिरत का अकीदा दिलों में बिठाने पर सरफ किया गया है। जबरदस्त दलाइल हैं, बड़ी रवानी है, मानी के अंदर बड़ी गहराई और एक रब्त है, और ऐसे लगता है छोटी छोटी आयात रदीफ काफिये मिलते हुए एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक सूरत के बाद दूसरी सूरत, के लगता है कि जैसे जो है कोई सवार बैठा हुआ है और उसके पीछे फिर रदीफ हो ना, रदीफ जो उसके पीछे बैठे, एक सूरत के बाद दूसरी। पुरजोर दलाइल, जितनी उनके इनकार में शिद्दत थी उससे ज्यादा पुरजोर तरीके से दलाइल के जरिए कहा गया कि फैसले का दिन यकीनन मुकर्रर है। और ये जो सूरत नबा की पहली आयात है, पांच आयात, इसमें भी आखरत का, कयामत का भरपा होना, उसका असबात, उस पर जो है वो बड़े वसूक के साथ, बड़े यकीन के साथ, बड़ी ताकीद के साथ ये कहा गया है कि कयामत आकर रहेगी और आखरत की खबर होगी। क्यों? सवालिया अंदाज में कहा कि ये किस चीज के बारे में पूछ गिछ करते हैं, और उस बड़ी खबर के बारे में जिसके बारे में इनकी मुख्तलिफ राय हैं। कल्ला का लफ्ज डांट के लिए आता है, कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा, सुम कल्ला सयालमून, हाँ हरगिज नहीं, अनकरीब पता चल जाएगा। अब ला भी तो आ सकता था ना, लेकिन कल्ला, हरगिज, हरगिज नहीं, इसके अंदर जो है एक डांट है, निहायत जोरदार अल्फाज में इन्हें तंबीह की गई है, इन्हें इनके अंजाम से खबरदार किया गया है। अच्छा, फिर कल्ला एक दफा कह दिया तो सुम्मा कल्ला क्यों कहा? ये जो तकरार है, जुमले की तकरार, दावे को सिर्फ मौकित करने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं ताकीद के साथ साथ के कयामत आके रहेगी और अजाब मिलकर रहेगा। कयामत जब आएगी तो होगा क्या कि लोग फिर अजाब में चले जाएंगे जो इसका इनकार करते हैं। अब यहां से जो है दलाइल का एक सिलसिला शुरू होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़े पुरजोर दलाइल दिए हैं, और दलाइल जब दिए हैं तो किसी और दुनिया की बात नहीं की। आयत नंबर 6 से लेकर 17 तक अल्लाह ताला की रबूबियत, रहमत, हिकमत और कुदरत की निशानियां जो जमीन से लेकर आसमान तक फैली हुई हैं, अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो गवाही दी है, उनकी दलील दी है कि जमीन से लेकर आसमान तक फैली हुई निशानियां पुकार पुकार कर कह रही हैं कि इंसान तो इस दुनिया में गैर मसूल बनाकर नहीं भेजा गया, तो मुतलिकुल अनान नहीं है, बल्कि अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है और फिर जो है वो हिसाब किताब होकर रहेगा। आइए इन दलाइल को समझते हैं। अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या नहीं बनाया हमने जमीन को मिहाद। अब आप देख लीजिए कि अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि इंसान, क्या जमीन को हमने तुम्हारे लिए मिहाद नहीं बनाया। मिहाद कहते हैं बिछोने को, कुरान में बिछोने के लिए मिहाद, फिराश और मदाजे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो मिहाद और फिराश जो है ये दोनों जमीन के लिए आए हैं। मिहाद वैसे तो बिछोने को कहते हैं, है ना। बिछोना कैसा होता है कि जब उसकी सलवटें बिल्कुल निकली हुई हों, बिल्कुल सीधा जो है वो बिस्तर बिछा हुआ हो, तो इंसान उस पर सुकून से जो है वो सो जाता है। अब कहा जा रहा है کہ مہا جو میم ہا دال سے ہے مہدا، کہ زمین کو بچھا دیا گیا اور بچھانے کے ساتھ اس میں سامان تربیت بھی مہیا کر دیا گیا. اب زمین میں انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ فراہم کر دی. تو محاد کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک بچھانا اور دوسرا سامان تربیت مہیا کرنا. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک محاد بچھونا فرش بنایا، ایک پرسکون قیام گاہ بنایا. الم نجعل الارض محادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. اب آپ دیکھیں کہ زمین کو سامان تربیت بنانے کے لیے اور کیا کیا گیا کہ پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیے گئے. اگر زمین کے اندر پہاڑ گاڑے ہوئے نہ ہوتے، اس کے اندر لگائے ہوئے نہ ہوتے، تو زمین جو تھی ڈھلک سکتی تھی، ادھر ادھر جا سکتی تھی. اور تاج جو ہے کہتے ہیں وتت کی جمع کو، اور وتت کہتے ہیں اس کھونٹی یا بڑی میخ کو، پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں، لکڑی کا ہو یا لوہے کا یا کسی بھی چیز کا، تو وہ چیز، وہ قلعہ جس کا کچھ حصہ باہر بھی نکلا ہوا ہو اور کچھ اندر گیا ہوا ہو. تو اب مضبوط جو کیل ہوتا ہے یا قلعہ ہوتا ہے، یہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، اور مضبوط میخ وہ ہوتی ہے جو زیادہ اندر ہو. زیادہ اندر ہوتا ہے، تھوڑا اوپر ہوتا ہے، تو اس کو جانور جو ہے اکھیڑ کر بھاگ نہیں سکتا. پھر اس کے ساتھ رسی باندھی جاتی ہے تاکہ جانور اسے بن جائے. اب زمین کے اندر جو پہاڑ ہیں وہ میخوں کی طرح گاڑ دیے تاکہ زمین ادھر ادھر نہ ہو جائے، زمین ادھر ادھر نہ چلی جائے. تو کیا فرمایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. تو جبال جبل کی جمع ہے. اب یہاں پہ پہاڑوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ ایسے ہی نہیں بنائے گئے، بلکہ پہاڑوں کو پیدا کرنے کا مقصد زمین کو لرزنے سے روکنا تھا، زمین کپ کپائے نہیں، لڑک نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر انسان اس پر جو ہے وہ چل پھر نہ سکے. سورت نحل میں بھی پڑھ چکی ہیں آپ، والقافل اردی رواسیا انتمیدا بکم، پڑھا نا آپ نے. تو یہی بات ہے جو قرآن میں بار بار آتی ہے اور مختلف انداز میں آتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا منہ بولتا شاہکار ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دیا. ازواج زوج سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ زوج کے پھر معنی کیا ہے، مذکر بھی مؤنث بھی، نر اور مادہ. ایک تو یہ معنی ہے کہ عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورت، اور کشش پائی جاتی ہے نا بہم. دوسرے اس کے معنی ہے ازواج اصناف اور الوان کے معنی میں ہے. اصناف قسم قسم کے، مختلف رنگ نسل، اور الوان یعنی رنگ کے معنی میں. تو مختلف شکلیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے، کسی کا دراز قد ہے کوئی کوتاہ قد ہے، سفید اور سیاہ. الوان اور اصناف میں جو ہے انسان کو پیدا کیا. تو ازواج پھر قسم قسم کے معنی میں ہے، رنگ میں بھی اور صنف میں بھی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے نَوْمَكُمْ تمہاری نیند کو. نوم جو ہے کسے کہتے ہیں؟ نیند کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور منام کسے کہتے ہیں؟ خواب کو کہتے ہیں، ہے نا، یعنی جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی، اور جو خوابگاہ جس میں سویا جاتا ہے وہ بھی، ظرف زمان بھی اور مقامی، تو منام. اچھا، بہرحال نومکم تمہاری نیند کو کیا بنایا؟ سباتا. سباتا جو ہے سین باتا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کاٹنا، کاٹ دینا. اور سبت، ہفتے کے دن کو بھی کہا جاتا ہے نا، کہ اس دن وہ کیا کرتے تھے؟ کام نہیں کرتے تھے، ان کو کام کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی، تجارت کرنی یہودیوں پر حرام تھی، یوم سبت. تو سبت کا لفظ یا سبات کا لفظ جو ہے پھر استعمال کیا جاتا ہے راحت اور سکون کے معنی میں. اچھا، یہ جو مردہ ہوتا ہے اس کو بھی مضبوط کہتے ہیں، مردے کو مضبوط کہتے ہیں. کیوں؟ سارے کام چھوڑ دیتا ہے، ساری حرکت ختم ہو گئی، بڑا مصروف تھا، बड़े काम करता था, फुर्सत नहीं होती ना 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। औरतें जो है अपने माँ बाप को मिलने नहीं जाती, कहती हैं कि बच्चे फिर क्या करेंगे, फिर शौहर क्या करेगा, फिर घरों का क्या होगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मनो मट्टी के बीच मजबूत हो जाती हैं, सारे काम छोड़ देती हैं। इसी तरह मर्द का हाल है, बीमार है, परेशान हाल है, लेकिन कोई भी हाल वो जॉब करनी नहीं छोड़ता कि बच्चे खाएंगे कहां से। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वही बच्चे, वही बीवी, वही वालदैन, वही बहन भाई, लेकिन वो मजबूत बन जाता है, सारे काम छोड़ देता है। वजअलना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारी नींद को बायसे सुकून बनाया, तुम्हारी नींद को आराम जो है वो बना दिया, आराम और राहत बना दिया। अब आप देखिए कि सारा दिन हम काम करते हैं और इसलिए नहीं सोते कि आराम करने की नीयत होती है, इसलिए सो जाते हैं कि काम करते करते बेदम हो जाते हैं, काम नहीं खत्म होते। छोड़ना नहीं चाहती पढ़ाई पर आंखें बंद होने लगती हैं, छोड़ना नहीं चाहते सफाइयां, बर्तन। आप सिर्फ बर्तन की मिसाल ले लें, आप सुबह उठती हैं, आप बर्तन धोने शुरू करती हैं, आप कहती हैं अच्छा नाश्ते से पहले जो अभी इधर उधर बच्चों ने गिलास रखे हैं उनको इकट्ठा करती हैं, धोती हैं, फिर नाश्ता देती हैं, फिर धोती हैं, फिर चक्कर लगाती हुई इधर उधर सिंक पर आती हैं तो कहती हैं ये भी क्या मुसीबत है, ये सिंक फिर बर्तनों से भरा हुआ मेरा मुंह चिढ़ा रहा है, फिर धोती हैं, फिर दोपहर को। हत्ता के वो जो डिश वॉशर है कहते हैं उसका तो कोई फायदा नहीं है, कि वो ज्यादा आसान है कि साथ साथ में दो दो चार चार करके धो लूं। अब क्या हुआ, दोपहर को धोया, फिर ये कि अब रात के खाने से पहले फिर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, अब रात को भी आपने धोए। अब हुआ क्या कि इशा की नमाज पढ़ी, अब मैं सोने लगी, मैंने कहा मैं बाहर आई तो अब देखा कि फिर सिंक जो है उसमें बर्तन पड़े हुए हैं, है ना। तो अब जो है हत्ता के सुबह उठे फिर बर्तन, तो बर्तन ही बर्तन। और फिर एक दफा ख्याल आता है कि अच्छा पढ़ाई बाद में करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, या कोई काम जो है बाद में करती हूँ, फिर ये ख्याल आता है ये फिर ऐसे ही भर जाना है, तो अच्छा इकट्ठे हो जाएंगे फिर ही धोंगी। फिर आप क्या करती हैं कि कहती हैं कि मैं अब क्या करूं, बस आप फिर लेट जाती हैं। इसी तरह खाना पीना देख लें, बच्चों के काम, फोन का झंझट, सारा दिन जो है वो काम रुकते नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद को बायसे सुकून बनाया, ये बड़ी अहम बात है। एक बात आप याद रखिएगा कि ऐसी नींद जो जिसमें राहत और सुकून हो। क्यों? वैसे तो बहुत से लोग सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी नींद जो है वो बायसे सुकून नहीं होती, करवटे बदलते हैं। बहुत अमीर लोग हैं, बड़ा अच्छा बेडरूम है, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, हमारी तरह का एसी नहीं है कि कभी बहुत तेज हो जाता है कभी बहुत हल्का हो जाता है। तो जो हीटिंग और एसी जब सेंट्रल होते हैं तो बिल्कुल नेचुरल, जितनी के इंसान को जरूरत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ये नींद जो है ना इसको मैंने तुम्हारे लिए बायसे सुकून बनाया। अब वो लोग जिनको नींद नहीं आती और जैसे बहुत अमीर हैं तो उतना ही डर है कि कहीं डाका ना पड़ जाए, कहीं कोई चोर चक्का ना आ जाए, और मेरी वो दौलत जो है, जो जो अमीर जितना होता है ना वो 99 के हिसाब में रहता है, हर वक्त जो है ना वो 99 के चक्कर में रहता है। 99 हो तो फिर 100 बने, फिर वो एक गिनना शुरू करता है 1 2 3, हत्ता के फिर वो 99 के चक्कर में आता है, फिर वो कई सौ, फिर कई हजार, फिर कई लाख। और ये चीज उसकी रातों की नींद, दिन का सुकून, रिश्तेदारों के हकूक, नमाजें, हलाल हराम की तमीज, सारा कुछ उसकी जिंदगी से छीन कर ले जाती है। और फिर बाद लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आती तो गोलियां खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, बाद लोग नशा करते हैं। और अभी पिछले दिनों एक औरत कह रही थी कि मैं और मेरे मियाँ रात रात भर जागते हैं अपने बेटी के मसले की वजह से, बहुत हम परेशान हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए और ऐसे जोड़े की शक्ल में तुम्हें पैदा किया ताकि आपस में जो है साजगार हालात में, साजगार माहौल में एक दूसरे से सुकून हासिल करो, और फिर तुम्हें नींद जो थी वो दी। नींद तमाम हमूम गमूम अफकार को कता कर देती है, दिमाग को सुकून देती है। दुनिया की कोई राहत, कोई दौलत, कोई जागीर, मुल्क, महल जो है इसका बदल नहीं हो सकती। इसीलिए बाज लोगों ने इसका तर्जमा जो है सुबात का राहत से किया है, वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने नींद को तुम्हारे लिए बायसे सुकून बनाया। तो ये नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और बाज़ जो महल में रहने वाले हैं उनको वो सुकून नसीब नहीं होता जो एक झोंपड़ी में रहने वाले के को सुकून होता है, उसके चेहरे पर एक सुकून उसके दिल में एक तमानियत और उसके जो है जिंदगी के अंदर एक गिना पाया जाता है, बड़ा सुकून पाया जाता है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहर माशा। अब सिर्फ यही नहीं कि जो है वो मर्द और औरत के जोड़े पैदा किए, बल्कि रात और दिन भी एक दूसरे का जोड़ा जोड़ा है। वजअलना लैला, और हमने बनाया रात को क्या बनाया, लिबासा लिबास बनाया। अब आप देखें कि लिबास क्यों पहना जाता है, ताकि हम अपने जिस्म को लिबास के अंदर छुपा लें। तो जिस्म के जो अंदर के हमारे अज़ा हैं, फितरी तौर पर इंसान जो है वो उनको छुपाना चाहता है, तो लिबास जो है जिस्म के अज़ा को छुपा देता है। तो क्या कहा कि रात जो है इसी तरह लिबास है, जैसे कि हमारे जिस्म के लिए लिबास है ना, इसी तरह रात जो है वो हमारे लिए लिबास है। अब आप देखें कि रात को हमने छुपाने की चीज बनाया, ये क्यों कहा। असल में जब रोशनी ज्यादा होती है, जब शोर होता है, तो उस वक्त नींद नहीं आती, उस वक्त सो नहीं सकते। तो रात को अल्लाह ताला ने पर्दा बना दिया, रात का अंधेरा, इसकी स्याही एक पूरे लिबास की चादर की तरह, एक बड़ी चादर की तरह हमें अपने दामन में छुपा लेती है, जिस तरह के लिबास इंसान के जिस्म को अपने अंदर छुपा लेता है। और आप देखें कि बाज़ुकात जो है चादर की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो रोशनी की वजह से नींद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मुझे जरा चादर दे दो, मेरा जरा दरवाजा बंद कर दो, ये जो है ना कर्टन नीचे गिरा दो, ताकि कोई चीज मुझे खलल अंदाज मुझ पे ना हो और मैं सुकून से जो है वो चंद घड़ियां आराम कर सकूं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वजअलना लैला लिबासा जो है, दरअसल ये जो नींद का बायस सुकून होना है, कहा कि नींद बायस सुकून उस वक्त बनती है जब मैं जो है वो क्या करता हूँ, सारी दुनिया में ऐसे हालात पैदा कर देता हूँ। नंबर एक, रात की तारीकी। नंबर दो, रात का पूरी दुनिया पर छा जाना। इंसान तो इंसान, जानवर भी सो जाते हैं। वैसे तो आप देखें कि अगर अल्लाह ना सुलाए तो कोई सोए ना, काम हमारे खत्म ही ना हो, लेकिन जो है वो फिर सब सो जाते हैं, क्योंकि दिन के वक्त लोगों के सोने के औकात मुख्तलिफ होते हैं। लाख कोशिश के बावजूद कभी फोन और कभी दरवाजे पर बेल और कभी किसी का भी मौका आ जाना और कभी बच्चों का ही दरवाजा खोल लेना और वो सॉरी सॉरी करते रह जाते हैं, लेकिन ये क्या, वो नींद तो कोसों हमसे दूर चली गई। वजअलना लैला लिबासा, और रात को पर्दा पोश बनाया। ये बात याद रखनी है कि मियां बीवी भी एक दूसरे के लिए पर्दा पोश होते हैं, और पर्दा पोश होना चाहिए, एक दूसरे की कमियां और कमजोरियां जो है उस पर पर्दा डालना चाहिए। हुसन का जरिया बने, जेबो जीनत का जरिया बने, एक दूसरे की शान और शौकत को जो है बढ़ाने का जरिया बने। अच्छा, रात तो अंधेरी के पर्दा ही हर तरफ हो गया और सो गए, और दिन किस लिए बनाया। वजअलना नहारा माशा, और दिन को माश का वक्त बनाया। अब आप देख लें कि नहार जो है क्या है, नून हा रा से है नहर, और इसमें क्या होता है कि जैसे नहर भी बहुत बड़ी सी होती है, तो इसी तरह नहार बहुत बड़ा सा दिन है, और दिन को नहार कहा जाता है। माशा, माशा जो है ये मईशत से है, मस्दर मीमी है, रोजी कमाने का वक्त। तो दिन को माश का वक्त बनाया। अब आप देखिए कि अब दिन में माश करना का क्या मतलब है, जॉब करना, हुसूल माश की सरगर्मियों का इसको वक्त बनाया। अगर दिन रोशन है तो हम जॉब करते हैं ना, और माश और मईशत के मुख्तलिफ जो सामान और मेहनत और जिद्दोजहद करते हैं, अगर दिन में रोशनी ना होती तो हम अपनी माशी जरूरतें जो थी वो कैसी पूरी करते। तो सोने के लिए अंधेरा चाहिए था, रात उसको पर्दापोश बना दिया। काम करने के लिए रोशनी चाहिए थी, तो अल्लाह ताला ने जो है दिन को रोशन बना दिया। तो रात और दिन एक दूसरे का जोड़ा जोड़ा है, जमीन पर बाकायदगी के साथ मसलसल रात और दिन का उलट फेर होता रहता है, और ये इत्तफाकन नहीं है, बेमकसद नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बड़ी गहरी हिकमत है। और गहरी हिकमत क्या है कि कायनात में चीजें जोड़ा जोड़ा हैं, और वो रब जो दिन की रोशनी पर रात की चादर ला सकता है, वो दुनिया की जिंदगी की जो जिंदगी है उसको खत्म करके, मौत में मुब्तिला करके फिर एक और जिंदगी पैदा कर सकता है, फिर हिसाब किताब तो होकर रहेगा। ये सारे दलाइल जो हैं, ये सारे दलाइल किस चीज के लिए हैं कि कयामत आकर रहेगी, फैसले का दिन आना ही है। वबनैना फौकुकुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान कायम कर दिए। अब आप देखें, वबनैना और हमने बनाए, फौकुकुम तुम्हारे ऊपर, सबअन सात, शिदादन, शिदादन इसका वाहिद शदीद है, सख्त मजबूत को कहते हैं। तो सख्त मजबूत से मुराद यहां पर क्या है, आसमान, सात आसमान। तो अब तक आप जमीन की निशानियां देख रही थी, अब आसमान की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि नीचे ही नहीं जरा ऊपर भी निगाह उठाओ, सात मोहकम आसमान है। और आप देखिए सूरत मुल्क में आप पढ़ चुकी, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ। آية 3 اور 4, تو बड़े खूबसूरत सात मजबूत आसमान, जरा सा भी अंदर फतूर शिगाफ नक्स नजर नहीं आता। अच्छा, फिर इन सात आसमानों में जो है अल्लाह ताला की कुदरत की और भी बहुत सी निशानियां हैं, बहुत सी गैलेक्सीज हैं, बहुत से सैयारे सितारे हैं। वजअलना सिराजं वहाजा, और आसमान में हमने एक रोशन चिराग रखा, वजअलना और हमने रखा सिराजन, सिराज जो है मिसबाह भी आया ना लफ्ज सूरज के लिए, और यहां पे सिराज आया है, सिराज सीन राजीन कहते हैं, जैसे हुस्न हुसन को, जीनत जमाल को कहते हैं। मसलन मैंने आपको बताया था कि घोड़े के ऊपर जो जीन डाली जाती है उसको भी सर्ज कहते हैं, औरत जो चेहरे पर मेकअप करती है वो भी सर्ज लफ्ज उसके लिए भी आता है, बालों को गूंद कर खूबसूरत स्टाइल बना लेना उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो सिराजा वो चिराग जिसकी रोशनी सुर्खी माइल हो और उसमें उसमें हरारत कुवत और हुस्न और जमाल भी पाया जाता हो। अब आप देखें कि एक तरफ रात है और अंधेरा है, दूसरी तरफ जब दिन आया तो साथ ही सूरज भी आया, अब सूरज जब आया तो पूरी दुनिया में जो है वो रोशनी हो गई। और अहले मक्का क्या करते थे, उन्होंने अपने अलग अलग देवता बना रखे थे, और किसी ने आसमान का देवता, किसी ने जमीन का, और आप देख लीजिए मिस्री जो थे वो सूरज के का अवतार समझते थे, किसको, फिरौन को, फिर उसकी पूजा करते थे। तो कहा कि ये जमीन, ये आसमान, ये रात और दिन और ये सूरज, इन सब का खुदा एक है। वजअलना सिराजा, हमने बनाया सूरज को खूब चमकता हुआ रोशन। फिर दूसरा कहा वह हाजा, और वह हा जीम जो है ये कहते हैं आग की भड़क को, सूरज या आग की चमक, तपिश, आठ लफ्ज आए हैं भड़कने के लिए चमकने के लिए, और इसका पांचवा दर्जा है। वह हाज के अंदर दो बातें पाई जाती हैं, नंबर एक गर्म होना और दूसरा रोशन होना। तो सूरज जो है इसमें सिर्फ रोशनी हरारत और ये कुवत ही का जरिया नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये निहायत गर्म है और निहायत रोशन है। और आपको पता ही है कि एक मुख्तसर से फिक्रे में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत के अजीमुशान जो निशान है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। और आपको पता ही है कि जमीन का हुजम जो है वो छोटा है, और सूरज जो है वो जमीन के हुजम से कितनी है, 9,30,00,000 मील दूर है। हम इतने दूर हैं, 9,30,00,000 मील दूर, इसके बावजूद सूरज की रोशनी का हाल ये है कि अगर हम जब ये खूब चमक रहा होता है तो अपनी नजर जमा कर उसको देखने की कोशिश करें तो लम्हा भर के बगैर हम देख भी नहीं पाते। और गर्मी का इसकी का हाल क्या है कि जमीन के बाज हिस्सों में इसकी तपिश की वजह से दर्जा हरारत 140 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया कि जमीन को सूरज से एक मुनासिब फासले पर रखा है, ना उसे बहुत करीब होने की वजह से बे इंतहा गर्म है, ना बहुत दूर होने की वजह से बे इंतहा सर्द है। एक मुनासिब फासले पर रखा जिसकी वजह से इंसान, हैवान, नबातात हम सब जिंदा हैं, और फिर सूरज की जो कुव्वत और रोशनी है उसकी वजह से बारिश होती है, पानी बुखारात बनकर जब ऊपर जाता है, बादल, बारिश, फसलों का पकना और जो है वो जमीन का सोना उगलना, मौसमों का बदलना और हमारा जिंदगी में मुख्तलिफ काम काज करना, और ये सारा कुछ क्या है कि अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त भट्टी सुलगा रखी है। और फिर देखिए अरबों साल से रोशनी, हरारत और मुख्तलिफ किस्म की रेज है जिससे पूरा गैलेक्सीज का जो सिस्टम है वो इस उस वो जो है इससे फायदा हासिल कर रहा है। आप देखें कि बहुत से जगहों पे सोचते हैं, सुनते हैं फलां जगह गैस का कुआं निकल आया या पेट्रोल का निकल आया, फिर सुनते हैं कि वो खत्म हो रहा है, अब वहां पे वो खत्म हो रहा है, अब बिजली खत्म हो रही है, अब जो है लोड शेडिंग शुरू हो गई। अब आप देखें हजारों लाखों साल से ये सूरज रोशनी दे रहा है हर रोज, और दुनिया के तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक सब लोग ले रहे हैं, लेते रहेंगे, लेते रहे। अगर सूरज की रोशनी का बिल एक दिन का भी हमारे पास आ जाए, सारी दुनिया वाले भी मिल जाएं, तो इसकी रोशनी का बिल अदा नहीं कर सकते। फिर बोलो ऐ दुनिया वालों, फिर क्या करोगे? फिर एक ही बात है जो हम सबको पुकार उठना चाहिए और हम सबको कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतरीन जात है। फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन व अनजलना मिनल मुअसिराति माअन फज्जाजा, और हमने उतारा और हमने बरसाया। मिनल मुअसिराति, मुअसिरात जो है ये बादल बदलियों को कहते हैं, मुअसिरातुन वाहिद है, मुअसिरात जमा है, और असल में इसका रूट है ऐन सादरा। बहुत मैं छोटी होती थी और एक दफा एक मस्जिद में तरावियां पढ़ने का इत्तफाक हुआ, और पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं ना कि तरावियों के लिए या नमाज के लिए औरतों के लिए भी अलग जगह हो, तो वहां जो है वो मैं उस वक्त जो है वो कुरान को तर्जमा तफसीर से पढ़ रही थी और दारुल उलूम में, और वहां पे जो था वो नमाज का एहतमाम था और मैं तरावी पढ़ा करती थी, और हर रोज रात को तरावी की नमाज के बाद जो है वो पूरे सिपारे का खुलासा भी पेश किया जाता था। मेरे लिए चीज बड़ी अनोखी थी, बड़ी अचंभे की बात और बड़ी अच्छी लगती थी। और खलील हामदी साहब वो फौत हो चुके हैं और बहुत अच्छे एक मौर्रिख और राइटर, बहुत अच्छा लिखते थे, और ये मुख्तलिफ ममालिक उन्होंने बहुत से दौरे भी किए। तो मुझे याद आता है जैसे कि सूरत असर की वो तशरीह करे थे कि किसी भी सूरत की करे तो उसमें सूरत असर का लफ्ज, और उसमें उन्होंने बताया कि असर के लफ्जी मानी होते हैं निचोड़ना, और वो यही बात है, यानी असल में इसके मानी होते हैं निचोड़ना। तो असर जमाने को भी कहते हैं, जमाना इंसान की कुव्वत और सलाहियतों को निचोड़ता चला जाता है। अरबी जबान में असीर जूस को भी कहते हैं, वो फलों से निचोड़ कर निकाला जाता है। और इसी तरह ये बादलों को भी कहते हैं अलमोसिरात, और बादल क्या करते हैं कि उन पानी से भरे हुए होते हैं और फिर उनको जब निचोड़ा जाता है तो मूसलाधार बारिश हो जाती है। मुझे जब भी मैं असर का लफ्ज पढ़ती हूँ ना, मुझे वो याद आ जाते हैं, और पहली दफा चूंकि उनसे सुना बड़ा नया और अजीब लगा, तो आज से मेरा ख्याल है 20-25 साल पहले की बात होगी, तो बहुत जैसे दिल के अंदर ये नक्श हो गया और शौक पैदा हुआ कि इस कुरान को मुझे समझना है, इतनी ज्यादा इसके अंदर गहराई और मुनासिबत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश रायगा नहीं जाती किसी भी इंसान की, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और वो एक रोड एक्सीडेंट में फौत हो गए, और मैं उनके लिए दुआएं मगफरत करती हूँ। बाज़ुकात उस बंदे को पता भी नहीं होता उसके लिए दुआएं करने वाले कितने होते हैं ना। वअंजलना मिनल मुअसिराती, और हमने उतारी बादलों से, और हमने उतारा बादलों से क्या, मा अनमा यहाँ पे पानी के लिए आया है लेकिन बारिश मुराद है, बारिश के लिए मा का लफ्ज आता है बारिश, और बारिश कैसी, सज्जाजा, सज्जाजा, और सा जीम जीम ये वाफिर को कहते हैं, पानी का रेला कसीर मकदार में मूसलाधार बारिश जब बरसती और बहती है। असल में सा जीम जीम जो है ये खून बहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कुर्बानी करने के लिए भी, और वो हज जिसमें जो है वो अज हो सज हो, बड़ा खूबसूरत हज होता है। जैसे बहुत ज्यादा लोग जो है वो तलबिया कह रहे हैं, जोरदार कह रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर क्या है सज कुर्बानियां हैं, तो ये मंजर जो है वो अल्लाह को बहुत पसंद आता है। तो दरअसल सज्जाजा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मूसलाधार बरसने वाली बारिश के लिए, जोरदार कसीर। तो हम ही हैं जो के बादलों से लगातार मूसलाधार बारिश नाजिल की, और जब बारिश नाजिल होती है फिर होता क्या है, लेनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम निकालें इससे, ताकि बिही की जमीर जो है ना ये मान सज्जाजा के लिए आई है कि ताकि इस जो मूसलाधार होने वाली बारिश है इस बारिश के जरिए से हम निकालें हब्बन व नबाता। हब्बन कहते हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, हब्बतुन वाहिद है और हब इसकी जमा है, और ये कहते हैं अनाज को, दाने को। तो हमने जो है वो दाने जो हैं वो जमीन से उगाए, कैसे, जब जमीन में बारिश पहुंची, जमीन हुई नरम और फिर जमीन जो थी दुल्हन की तरह सज गई, बहुत खूबसूरत बन गई, और तरह तरह के फल फूल सब्जियां दाने अजनास इसमें आ गई। हब्बन के लिए आप याद रखिएगा कि हब्बन वो अनाज है जिसे खुराक के लिए जखीरा कर लिया जाता है, गंदुम चावल जौ मकई नबतात सब्जियां चारा सब चीजें इसे मुराद हैं। अच्छा, इसी से मोहब्बत जो है ना वो भी हब दाने से ही है, क्यों, इसलिए कि इंसान जो है वो अजनास से बहुत मोहब्बत करता है, और जो है कहते हैं कि हब जो है वो छुपी हुई होती है, जैसे दाना भूसे में छुपा हुआ होता है, हब दिल में छुपी हुई होती है, हब दिल में छुपी हुई होती है। तो हमने जो है बारिश के जरिए से ये दाने अजनास पैदा की, वहां नबाता, और नबाता जो है ये कहते हैं सब्जे को, नबातात जो है उसके लिए ये नबाता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अजनास और नबातात पैदा करने वाले हम हैं, ये घास सब्जे सब्जियां घने बागात, तो नबाता से ये सारी चीजें जो हैं ये मुराद हैं, और ये बार बार अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि बारिश का नुज़ूल और बारिश के जरिए जो रोईदगी जमीन के अंदर पाई जाती है, सारी नबातात जो पैदा होती है, तो ये क्या है कि ये हम हैं पैदा करने वाले। आप ये भी गौर करें कि हब जो है जब इंसान खाते हैं तो इसका भूसा कौन खाता है, जानवर खाते हैं। अब नबातात में भी कुछ हम खाते हैं और कुछ जानवर खाते हैं, तो चिरिंद परिंद इंसान हैवान सबकी जरूरियात जो है वो हम पूरी करते हैं। व जन्नातिन अल्फाफा, और बागात हैं लिपटे हुए, लफ लाम फाफा, और ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसके मानी होता है कि जैसे लिपटे हुए, लिफाफा लफीफ, के एक के ऊपर फिर दूसरा, तो ये जो बागात हैं इनके घनेपन की तरफ यहाँ पे इशारा किया जा रहा है कि बागात जो हैं ये इतने घने हैं, इतने घने हैं कि एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, बहुत ज्यादा जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक जन्नत नहीं, एक बागनी बागात अल्फाफा, ये घने हमने उगाए। तो ये कौन है पैदा करने वाला, अल्लाह। तो आप देख लीजिए इन तमाम आयात में अल्लाह ताला बहुत से दलाइल को पेश कर रहे हैं, और दलाइल पेश करने का मकसद कयामत और आखरत का इनकार करने वालों को ये बताना कि जरा अपनी आंखें खोल कर देखो, जरा सोचो तुम्हें जमीन पहाड़ अपनी पदाइश नींद बेदारी रात और दिन, और फिर ये कायनात का बंदा हुआ निजाम जिसमें चमकता हुआ सूरज बादलों से बरसने वाली बारिश नबतात, दो चीजें इसमें तुम्हें खास तौर पर नजर आएंगी। नंबर एक ये कि जबरदस्त कुदरत वाले ने इसको बनाया है, खुद नहीं बन सकता ये सारा कुछ, और ये जो अल्लाह ने बनाया है बाकायदगी से चल रहा है, और दूसरी अहम बात ये कि इन सब चीजों के अंदर एक हिकमत है, एक अजीम हिकमत, और वो हिकमत क्या है, इन यौमल फसल का नमी कौता, के बेशक फैसले का दिन जो है मुकर्रर है, फैसले का दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। तो अब यहां पर आप देखिए कि इन्ना जो है ये ताकीद से है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जोरदार अंदाज में कह रहे हैं कि बेशक फैसले का एक दिन मुकर्रर है। पहली 16 आयात का निचोड़ क्या है, इन्ना यौमल फसल कैना मीकाता, ये फैसले का दिन मुकर्रर है। मीकात जो है ये वक्त से है और इसकी जमा है मवाकीत, और जो है ये मवाकीत या मीकात जो है ये मुकर्रर जगह के लिए भी आता है और वक्त के लिए भी आता है। आप देख लें हज और उमरा करने वाले, उनके लिए मवाकीत मुकर्रर कर दी गई, उनके लिए मीकात है कि किस जगह पर जो है उन्होंने क्या करना है, फिर एहराम बांधना है, और फिर उस वक्त जो है वो फिर एहराम बांधते हैं और नियत कर लेते हैं। तो अब कहा जा रहा है फैसले का दिन मुकर्रर है। फैसला किस चीज का, कि दुनिया में लोगों ने कैसे अमल किए, कैसे थे उनके करतूत और कैसे थे उनके हुस्ने अमल, इसका एक दिन मुकर्रर कर दिया गया। आगे पीछे नहीं होने वाला, मीकात से पहले अगर कोई मीकात से गुजर जाए और उसके बाद एहराम बांध ले तो फिर क्या है कि उसका हज और उमरा कबूल नहीं है, है ना। तो अब फैसले का दिन जो मुकर्रर है अहले मक्का के मुतालबे से पहले नहीं आ सकता, बाद में भी नहीं। अब आयत नंबर फिर 18 से लेकर 30 तक कयामत की हौलनाकी और जो सरकश और मुजरिम है उनके अंजाम की तस्वीर पेश की गई है। क्या कहा कि जब फैसले का दिन आएगा, इन यौमल फसल कनमी क्वाता यौम युनफखु फिस्सूर फतातून अफवाजा, कि जब सूर में फूंक मारी जाएगी, और स्वाद वो रा जो है ये फूंक मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो है उस चीज को भी कहते हैं जिसमें फूंक मारी जाएगी। तो ये लफ्ज जो है जैसे फूंक मारना और वो जो है वो चीज जिसमें जो है बिगल जिसमें फूंक मारी जाएगी, तो कहा जा रहा है यहां पे कि फूंक मारने का एक वक्त जो है वो मुकर्रर है, और जब ये फूंक मारी जाएगी बिगल जो है वो बजाया जाएगा। अब आप देखें कि मैं इस पे गौर कर रही थी कि जिस रोज सूर में फूंक मारी जाएगी तो अब इतने ज्यादा लोग जो है वो मरे हुए हैं और सारे के सारे एकदम उठ खड़े होंगे तो सब तक आवाज कैसे जाएगी, लम्हे भर के लिए आप इस बात पर सोचते हैं ना। लेकिन एक बात आप याद रखें कि कहीं अल्लाह ताला ये भी कहते हैं ना फायजा नोकी रफिन नाकूर, कि जब सूर में फूंका जाएगा तो नकरा का मतलब होता है किसी बजने वाली या अंदर से खाली चीज में फूंक मारना। तो अब ये जो फूंक मारी जाएगी तो होगा क्या कि वो आवाज बिगल सूर या नरसिंगा सुनकर सारे लोग जो है वो उठ खड़े होंगे। और यहां पे नफाखा पेट के फूलने के लिए भी आता है ना, कि जिस्म में फूंक मारकर हवा दाखिल की जाए, जैसे गुब्बारा है खाली होता है अंदर से लेकिन फूंक मार दी जाए उसमें तो भर जाता है। तो अब फूंक मार दी गई सूर में और हुआ क्या, फतातून अफवाजा, तो तुम सब के सब फौज निकल आओगे, फौज की जमा है अफवाज। इसमें जो है कहते हैं कि वो जो बिगल है जिसमें जो है इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, कहते हैं कि उसमें इतने सुराख हैं जितनी के लोग कब्रों में है, और हर एक को उसकी कब्र में जहां भी वो है उसको वहां पे आवाज आएगी कि जैसे कोई करीब से उसे कह रहा है, और बड़ी वो दहशतनाक हैरतजदा होकर लोग उठ खड़े होंगे। फिर मैं इसमें सोच रही थी कि जैसे ये आप देखें स्कूल्स हैं, बहुत से पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, मॉल के बंद होने का वक्त जब होता है या स्कूल में कोई अनाउंसमेंट होती है तो एक माइक सिस्टम है ऑफिस में, एक अनाउंसमेंट करने वाला है, एक हर क्लासरूम में आवाज जाती है, हर क्लासरूम में, और एक को बुलाना हो तो ऐसी अनाउंसमेंट वो कर लेते हैं, उनके पास एक बटन होता है, बस सिर्फ उस क्लासरूम की टीचर को जो है वो अनाउंसमेंट करके बुलाया जाता है, और एक अनाउंसमेंट होती है सारे वयकवा सुनते हैं। अब सोचिए, मैं गौर कर रही थी कि ये बात हमें समझ आती है कैसा होता है ना, तो अल्लाह के यहां तो कोई चीज भी बईद नहीं है। यौम युनफखु फिस्सूरी फतातून अफवाजा, वो लोग जो इनकार करने वाले हैं फिर उनका हाल क्या होगा, फतातून अफवाजा, कि फिर वो फौज दर फौज जो है वो भागे चले आएंगे। अब आप देखेंगे किसी का फौज दर फौज आने का मतलब क्या है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने लोग जमा होंगे सारे आ जाएंगे। वो फुतिहत इस्समा उफकनत अबवाबा, और खोल दिया जाएगा आसमान हत्ता के वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। फतह का मानी होता है खोलना, और फुतिहत यहाँ पे मजारे मजहूल है, और खोली गई और खोल दिया गया आसमान। आसमान आसमान जो है इसके अंदर एक बंदिश है, आसमान के अंदर एक ग्रेविटी है, कशिश है। और आप देखें कि गैलेक्सी सितारे सूरज चांद गिरते नहीं है इसमें से ना, लेकिन वो बंधन खोल दिया जाएगा और आसमान हो जाएगा अबवाबा। बाप की जमा है अबवाब, दरवाजे दरवाजे। उस दिन आसमान जो है इसमें क्या होगा, सुराख सुराख हो जाएंगे। अभी तो हमें ये बड़ा मोहकम लगता है, लेकिन उस दिन इसमें दरवाजे दरवाजे नजर आएंगे। वसुयिरतिल जिबाल उफकानत सराबा, यहां तक के पहाड़ जो है वो चलने लगेंगे। अब आप देख लें पहाड़, अभी पीछे भी सूरतों में आपने पढ़ा रवासिया है, जिबाल है, और इसी सूरत में आपने पढ़ा केवल जिबाल उतादा, और यहाँ कहा जा रहा है वसुयिरतिल जिबाल उफकानत सराबा, और पहाड़ चलाए जाएंगे सैर करते हुए नजर आएंगे यहां तक कि वो सराब बन जाएंगे। और सराब जो है ये चमकती हुई रेत को कहा जाता है। चमकती हुई रेत का मतलब क्या है कि आप देखें कि रेत जो दूर से चमकती है तो पानी महसूस होती है, और करीब जाएं तो पता चलता है अरे ये तो रेत थी। आप रोजमर्रा जिंदगी में मुशाहिदा कर सकते हैं कि आप जो हैं जब जाते हैं रोड पर, गाड़ी चल रही होती है, दूर से ऐसे लग रहा है पानी है ठाठे मारता हुआ, जब करीब जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, बस धूप में जो रेत के जर्रे हैं या सड़क है वो चमक रही है। तो पहाड़ भी सराब की तरह सिर्फ दूर से नजर आने वाली चीज बनकर रह जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, कुछ भी इनका निशान बाकी ना रहेगा। दूसरी इसके मानी ये भी बयान किए गए हैं कि कुरान में पहाड़ों की मुख्तलिफ हालतें बयान की गई हैं। तो फिर पहाड़ों को क्या किया जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, फदुक्कता दक्कतं वाहिदा, सूरत अल-हाका, रेजा रेजा किया जाएगा। फिर क्या दूसरी इसकी हालत क्या होगी, कल इहनिल मनफूश, सूरत अल-क़ारिया, वो बुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। सूरत अल-क़ारिया आयत नंबर 3, ये दूसरी जो है इनकी हालत होगी। फिर जो है सूरत क़ारिया में जब अल्लाह ताला ये कहते हैं तो तीसरी हालत ये है कि वो गर्दो गुबार बन जाएंगे। फकानत हबा मुंबसा, कि वो फिर जो है वो हो जाएंगे जो है वो मट्टी की तरह उड़ते हुए। हबा अम मुंबसा, फैली हुई उड़ती हुई मट्टी, ये सूरत वाकया आयत 5-6। फिर चौथी इन पहाड़ों की हालत क्या होगी कि इनको इतने सख्त मोटे मोटे पहाड़, और आप देखेंगे इनको जो है उड़ा दिया जाएगा। कैसे, यनसिफुहा रब्बी नस्फा, सूरत ताहा आयत 105। पांचवी हालत ये होगी कि सराब बन जाएंगे, कि नजर ही नहीं आए, कुछ भी नहीं, खत्म। ये है जिसकी यहाँ पे निशानदेही कही गई है, सराब के पहाड़ वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे, बस एक धोखा, चमकती हुई रेत। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नुम है घात में। मिरसाद का लफ्ज जो है ये चौकीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रसादा, रा स्वाद दाल, ताक में बैठना, घात लगा के बैठना। तो अब घात में कौन बैठता है, शिकारी बैठता है ना शिकार ये घात में। तो अब जहन्नुम जो है ये घात में है, और जहन्नुम है शिकार करने वाली, इसका शिकारी कौन है, इसके नाफरमान। तो मिरसाद जो है घात की जगह मकाम इंतजार को कहते हैं, जैसे मजदरे, ये क्या है, मजदरे मीमी है, कि जहन्नुम जो है वो एक घात लगाए हुए है। किन लोगों के लिए, लितागीन माबा, सरकशों का ठिकाना है, तागी वाहिद है, तागीन जो है वो इसकी जमा है, और माबा ठिकाना औब, कि ऐसी जगह जहां जो है वो मुनासिब माहौल हो और मुनासिब फिजा हो और वहां आकर आबाद हो जाया जाए, किसी को इसकी तबीयत और पसंद के मुआफिक जगह पर आबाद करना। तो अब जहन्नुम जो है वो इनका ठिकाना बना दी गई है। लित्तागीना माबा, तो ये जो ठिकाना है ये किसका है? ये तागियों का है। अब जहन्नुम इनकी पनागाह बन जाएगी, इनकी गोद बन जाएगी, इनकी तरफ लौट कर आएंगे। ला बिसीन फीहा अहकाबा, वो पड़े रहेंगे इसमें मुद्दतों, एक दो दिन नहीं, अहकाब। अहकाब किसे कहते हैं? अहकाब का लफ्ज जो है आप देखिए कि हकब, हकब वाहिद है, अहकाब जमा है, हकब इसका रूट भी है, और कहते हैं पे दर पे आने वाले तवील जमाने, ऐसे मुसलसल अदवार के एक दौर खत्म होते ही दूसरा दौर शुरू हो जाए। कुरान में 34 जगह पर अहले जहन्नुम के लिए खुलूत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। खुलूत का लफ्ज, और वो भी किसके लिए आता है? हमेशगी के लिए आता है ना। और 3 जगह पर खुलूत के साथ जो है अबदा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो हैं रहेंगे इसमें कितनी देर? अहकाबा, मुद्दतों। तो हकब को समझने के लिए कि एक जमाना खत्म होगा उसके साथ दूसरा हकब शुरू हो जाएगा, एक हकब के बाद दूसरा हकब, एक दौर के बाद दूसरा दौर, और साथ ही फिर खुलूत को भी सामने रखें और फिर अबादा को भी, कोई कमी नहीं होगी। गोया के वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, गोया के हमेशा पड़े रहेंगे। ला यज़ूकूना फीहा बर्दन वला शराबा, नहीं वो चखेंगे इसमें ना ठंडक और ना ही कोई पीने के लायक चीज। आप सोचिए कि जहन्नुम है, जलती हुई आग, और आकाब मुद्दतों करनों, तवील जमाने तक वो उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन हाल क्या है कि ना ही इसमें ठंडक है और ना ही पानी पीने के लिए मिलेगा। तो क्या? इल्ला हमीमन व गस्साका, मगर गर्म पानी और बहती हुई पीप। हमीम जो है बुखार के लिए भी आता है, हुमा, और उस गर्म पानी को कहते हैं जो इंतहाई गर्म पानी हो, शदीद गर्म पानी। और हमीम जिगरी दोस्त को भी कहते हैं जिसके अंदर जज्बात की गर्मी पाई जाती है, बहुत जो है वो दिल, जान, माल, दौलत सब कुछ अपने दोस्त पर लुटा देने वाला। तो पीने को जो दिया जाएगा तो ना तो उसमें ठंडक है ना ही कोई पीने की चीज है, है मगर हमीमन, गरम, शदीद गरम। और क्या है? वगस्साका, और बहती पीप। गस्साक, मुफस्सरीन ने गस्साक के मानी बयान किए हैं पीप के और लहू के। और ये पीप और लहू कहां से आएगा? ये आएगा जो जहन्नमी होंगे इनके जख्मों से, इनके जो जख्म होंगे और जल रहे होंगे और जो कच लहू सा बहेगा तो वो इनको पीने को दिया जाएगा। और क्या होगा? बात कहते हैं कि गंदा पानी भी इसमें शामिल है। अब आप देख लें कि एक तरफ सूरत मुरसलात में आपने पढ़ा कि साया जिल जो है वो धुएं का साया है, अब धुएं के साये में भी आपने पढ़ा कि वहां पे जो उनको साया मिलेगा होगा वो धुएं का साया, लेकिन साथ ही उस साये के अंदर कोई ठंडक नहीं होगी। कोई ठंडक नहीं होगी। इंतलिकु इला जिल्लिन जी सलासे शुअब ला जलीलिन वला युगनी मिनल लहब, है ना। और अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इनको जो पानी पीने को दिया जाएगा ना ठंडक है और ना ही कोई पीने के लायक ये चीज है, पीना भी इसका नसीब नहीं है, अगर दिया भी जा रहा है तो हमीमन, गर्म पानी, वगस्साका, और बहती पीप, जख्मों का धोवन, लहू, गंदा पानी। अब आप देखें कि पीप को पीना तो दूर की बात है, ये जख्मों का धोवन जो है इसको पीना तो दूर की बात है, देखने को भी दिल नहीं चाहता। अगर माँ बाप के या औलाद के किसी के कोई जख्म हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए और जो ड्रेसिंग करनी होती है तो अपने भी साइड पर हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं बहुत बदबू आती है, इनका बिस्तर अलग कर दें, इनको अलग कर दें, और घिन आती है, और खुद उस बंदे को भी घिन आती है जिसको वो तकलीफ होती है या जो मर्ज होता है ना। और अब जो है उसको देखना तो दूर की बात, सूंघना तो दूर की बात, अब कहा जा रहा है कि वो उनको पीने को दिया जाएगा, बहता हुआ है ये पीप और कचलहू। क्यों ऐसा होगा? जजा विफाको, एक आयत है दो छोटे छोटे लफ्जों पर मुश्तमिल और पूरी काफरों की दुनिया की जिंदगी का हासिल जजा, ये है बदला विफाको, पूरा पूरा, थोड़ा बदला नहीं है ये, वो बदला है जो पूरा पूरा जो है वो इनको दे दिया गया। विफाका वफाकाफ, दो चीजों के दरमियान मुताबकत पैदा करना, हम आंगी पैदा करना, मुवाफिक बनाना, हालात का किसी काम के किसी के लिए किसी काम के मुवाफिक कर देना। तो विफाका का लफ्ज फिर पूरा पूरा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि इनको जो बदला दिया जाएगा पूरा साजगार मुवाफिक होगा, हम आहंग होगा, कोई इनके साथ जो है वो ज्यादती नहीं की जाएगी। जैसे इनके अमल थे और वैसे ही इनको जो है वो बदला दिया जा रहा है, जैसे इनके अकायद थे, बुरे अमाल थे, अदलो इंसाफ के मुताबिक जो है इनको बदला दिया जा रहा है। इनका हाल क्या था? इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, तहकीक वो थे, नहीं उम्मीद रखते हिसाब की, इनको यकीन ही नहीं था कि मरेंगे और हिसाब भी होगा। किज़ाबा मस्दर है। अब आप देखें कि आगे की आयत में जो है वो किज़ाबा भी इस्तेमाल हुआ है और यहां पे क्या है? हिसाबा। तो हिसाबा के मानी क्या है कि इनको हिसाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये सोचते थे कि कोई हिसाब किताब होना ही नहीं और बेदर्दी से रसूलों का इनकार करते रहे। हिसाबा मस्दर, वकस जबू भी आयातिना किज़ाबा, और झुटलाते थे हमारी आयात को, फिर झुटलाना। और किज़ाबा भी मस्दर के तौर पर जो है वो आया है कि इन्होंने मेरी आयात को, रसूल को, और कायनात की आयात और निशानियां और कुरान की निशानियां और हर दौर की जो किताब की जो निशानियां थी उनको बड़ी बेदर्दी और बेबाकी से इन्होंने छुपाया। वकस जबू भी आयातिना किज़ाबा, उनकी अमली जिंदगी के जो रवैये थे आयत नंबर 27 और 28 में मुख्तसर अंदाज में पेश कर दिए गए कि एक तो इनको हिसाब की उम्मीद कोई नहीं थी और दूसरा ये कि ये झुटलाया करते थे, कभी मान कर ना दिया इन्होंने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं? वकुल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हर चीज को हमने घेर रखा है उसे लिख कर। अब आसैना जो होता है, एक होता है अद्दा या उदू गिनना, आम गिनती को कहते हैं ना, अदद मदूद, और आसा जो होता है ऐसी गिनती को कहा जाता है जिसमें पत्थर रख रख कर गिना चाहता है। उस जमाने में कोई जो है ये तारीखें कैलेंडर और हिसाब किताब का ये सिस्टम तो नहीं था, ना कोई कंप्यूटर और ना कोई कैलकुलेटर, तो वो कैसे गिनते थे? पत्थर रखते जाते थे और फिर हिसाब करते थे ताकि बिल्कुल सही हिसाब हो। तो हमने भी गिन गिन कर रखा है, सही हिसाब किया, बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब। और वो हिसाब कैसा है जो गिन गिन कर रखा है? किताबा, लिख कर भी उसको साथ ही रखा हुआ है ताकि जरा बराबर कोई कमी बेशी ना हो सके। इस गुमान में ना रहें कि इनके अमाल लिखे नहीं हैं, लिख कर शुमार करके बड़े एहतमाम के साथ उसको किताब की शक्ल में, किताबुल फुज्जार है ना, और दूसरी तरफ क्या है? किताबुल अबरार, इल्लीयीन है, सिज्जीन है, तो अमलों के मुताबिक है। फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, पस चखो। अब ऑर्डर का सीखा है ज़ौक से, ज़ौक ज़ायका, चखो। फलन नज़ीदकुम, हम पस हरगिज ज्यादा ना करेंगे तुम पर इल्ला अज़ाबा, मगर अज़ाब। तो आज अज़ाब के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं हो सकता, कुछ भी तुम मांगो एक ही चीज है और वो ये कि अजाब में तुम पर जो है वो इजाफा कर दिया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए कयामत की हौलनाकी और इंसान की बेबसी और कयामत की हलचल, बड़ी जबरदस्त जो है तस्वीर खींची गई है आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 30 तक कि बस चखो और ये बदला है तुम्हारे अमाल का, और इस अजाब के सिवा हम किसी चीज में जो है वो इजाफा ना करेंगे। तो क्या करना चाहिए, हम सबको भी अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी हिसाब किताब का इनकार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी जो है वो अल्लाह को और अल्लाह के कलाम और उसकी किताबें और उसका रसूल की जो जिंदगी है उसको जो है वो झुठलाते हैं। और अहकाब जो हुक्बा की जमा है, कहते हैं 80 साल का अरसा है एक हुक्म, या इससे भी जायद मुद्दत, या तवील और गैर मुइना मुद्दत। तो ये दुनिया की जिंदगी जो हमें एक बड़ी लंबी और तवील महसूस होती है, तो वहां पे जो है फिर क्या होगा, ये बहुत मुख्तसर लगेगी, बहुत छोटी सी मुन्नी सी, और फिर वहां पे जो है एक लंबा दौर शुरू हो जाएगा जिंदगी का, जन्नत में भी और जहन्नुम में भी। तो अहले दोज़ख को जो अजाब मिलेगा जो है वो एक तवील ना खत्म होने वाला अजाब होगा। अहकाबा, अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए।